ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानंद माधवं चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण। तो आज श्रीमद् भागवत सातम स्कंद अध्याय नहीं नौ श्लोक संख्या 45 चल रहा। कितने दिन हो गया पता नहीं। ये श्लोक इसकी पहले जो दोनों श्लोक और ज्यादा इम्पोर्टेंट है इससे हैं। इस्कन के लिए है। इसकी जो पहला पिछले श्लोक है कौन सा 44 नंबर श्लोक ये अधिक महत्वपूर्ण है। ये तो 43 और 44 है। प्रायण देव मुनय स्व विमुक्ति काम मौन चरंती विजन प्रार्थनिष्ठा नैतान विहाय कृपणा विमुख्य को नान्यं सुदस्य शरणं भ्रमत अनुपश्ये। कृपण शब्द है पिछले श्लोक से भी आ रहा है। कृपण से ये श्लोक जो आज की जो श्लोक है ये पिछले श्लोकों से संबंधित है और इसके आगे वाले श्लोक भी जो वो ही बताते हैं कि एक कृपण व्यक्ति कैसे फिर वो माने ये मैथुन आगार जीवन को त्याग कर कैसे भगवान की शुद्ध भक्ति में को प्राप्त करेगा। इसके अगले श्लोक और विशेष पे हैं इस प्रहलाद महाराज स्तुति का अंतिम श्लोक 45 नंबर श्लोक ने वो कितना है अगला श्लोक जो अंतिम श्लोक है प्रहलाद महाराज की स्तुति का उसमें बोलते हैं षडांग भक्ति है। इस षडांग भक्ति के माध्यम से इसको त्याग सकते हैं। ये तो सबको पता है सभी लोग भोग रहे हैं पर ये मैथुन जो ये ग्रह मधि सुखम ही तुच्छम। अभी आप 7-8 क्लास सुन सुन के तो आए इसके लेकिन इससे आगे निकालना कैसा है ये बड़ा बात है। कोई गिर गया है संग से मैंने गाड़े के अंदर गिर गया है तो वहां से निकाल कैसे निकाल मैंने यदि वो उसी के अंदर में रहकर सोचते रहेगा मैं कैसे गिर गया क्यों गिर गया ऐसे ही सोचते रहेगा तो और क्या होगा। मिट्टी और चारों साइड से गिरकर उसको वही समाधि बना देगा है। तो उसी की चर्चा करी, कैसे गिरा, क्यों गिरा, कहाँ, अरे उसे कैसे निकालेगा, पहले उसका उपाय करो। हैं, गिर तो गया, कैसे ना कैसे ऐसा मिथुन आकार जीवन संसार में गिर गया हूँ, लेकिन इसे निकालना क्या उपाय है। तो उसे निकालने का उपाय को जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम तात्पर्य की, प्रभुपाद जी की जो तात्पर्य है, इसके विशेष रूप में सेकेंड पार्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये श्लोक तो आप कई दिन सुनिएगा, ठीक है, श्लोक थोड़ा पढ़ लेते भी। यन मैथुनादि गृह मेधि सुखम ही तुच्छम, कंडो यनाने करो करयोरिव दुख दुखम, तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुख भाजा, कंडूति बन मनसी जं विषहेत धीर। विषय जीवन की तुलना खुजली दूर करने हेतु दो हाथ को रगड़ने की गई है। गृह विधि अर्थात तथाकथित गृहस्थ जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, सोचते हैं कि यह खुजालना सर्वोत्कृष्ट सुख है, यद्यपि वास्तव में यह दुख ही दुख की जड़ है। कृपण जो ब्राह्मण से सर्वथा विपरीत होते हैं, बारंबार इंद्रिय भोग करने पर भी तुष्ट नहीं होते, किंतु जो धीर है और इस खुजलाहट को सह लेते हैं, मूर्ख तथा धूर्त जैसे कष्ट नहीं सहने पड़ते हैं। तो गीता में भगवान कहते हैं, ये जब मैथुन आकार सुख है, ये कैसे है? हमारा उड़ीसा में सब लोग कहते हैं, उड़ीसा वो तो सुख होता है कि दो प्रकार की होता है, रसगुल्ला होता है और एक गुलगुला होता है। गुलगुला जानते हैं ना किससे बनता है? आलू को भरता बना के उसी से ऊपर के खिल थोड़ा छेदा पुट ऊपर लगा देते हैं, हैं? तो जो धनी घर के लोग हैं वो तो रसगुल्ला अपने बच्चे को देते खाने के लिए। जो गरीब लोग को क्या करता है, उसका बच्चा जो मांगता है हमको भी दो रसगुल्ला, हम भी खाएंगे, वो क्या देता है, वो गुलगुला देता है, वो आलू का भरता बनाया हो उसको खा के वो सोचता कि रसगुल्ला खा रहा हूँ, हैं, तो बड़ा खुश रहता है, मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ। वो भी दिखाता है उसको, धनी लड़का खाता है, ये भी गुलगुला खा रहा है, बोलते मैं भी खा रहा हूँ। लेकिन जब इसको पता लग गया, एक दिन वो सेठ जी का जन्मदिन था और जन्मदिन में बुलाया, अपने घर में सब वर्कर लोग को भी सब बुलाया, और उस दिन तो रसगुल्ला असली रसगुल्ला बांट रहा था, उसमें दे रहा था, हैं? जो असली रसगुल्ला खाना शुरू किया, जो खाया, पूछा ये क्या है, ये तो बहुत टेस्टी है, बोला ये रसगुल्ला है। धनी का लड़का बोला ये रसगुल्ला ही है, देख मैं क्या खाता। तो बोला अच्छा, मेरे पिताजी जो खिलाता है वो क्या है, बोला वो तो गुलगुला है। तो संसार में मैथुन आगार जीवन जो है वो कैसा है, गुलगुला खाना जैसे है। और रसगुल्ला तो भक्ति में जो आनंद रहते हैं, तो इसलिए प्रभुपद ने तात्पर्य में विशेष रूप में उनकी कोट की, क्या किसका, जमुनाचार्य की कोट है, जदवधि मम चित्त कृष्ण पदार बिंदे नव नव रसा रसधाम रंतुमासित तदवधि बत नारी संगमे में स्मर्यमाणी भवंती मुख विकार सुष्ठु निष्ठिवनंच। क्योंकि मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाया गया हूँ और उन्हीं में नया नया आनंद पाता रहा हूँ, अतः जब भी मैं विषय सुख के बारे में सोचता हूँ तभी इस विचार पर थू थू करता हूँ और मेरे ओठ अरुचि से विकृत हो जाती है, हैं? यह कृष्ण भक्ति का सुख। जो कृपण व्यक्ति होता है, जो प्रकृति में कृपण किसको कहा गया है, हैं? जिसके पास कुछ साधन होता है लेकिन इसको ठीक सही उपयोग नहीं करता है। कृष्ण भक्ति में अर्थात मनुष्य शरीर जो मिला है इसका सही उपयोग किस में होता है, कृष्ण भक्ति में, हैं? राधा कृष्ण नाभजिया जानिया सुनिया विष खाइनु हरि हरि विफले जन्म गुआइनु। ये मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो हरि भक्ति नहीं करता है तो उसी को प्रकृति में कंजूस कहा जाता है, हैं? कंजूस व्यक्ति वही है, उसको मनुष्य शरीर मिला लेकिन मनुष्य शरीर का सही उपयोग नहीं कर रहा है। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य तत् पशु भी नारायण है धर्म तो एक अधिक विशेष धर्मेण ही न पशु भी समान है। धर्म क्या है मनुष्य के लिए, धर्म क्या है, हैं? जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास, जीव जागो गौरा चंद्र बोले। मनुष्य का धर्म है भगवान की भक्ति करना, हैं? आमी कृष्णदास यही विश्वास हईले तो आर दुख नहीं, हैं? मिछे मायार बसे जाच्छ भेसे खाच्छ हाबुडुबु भाई, माया के जाल में खाच्छ हाबुडुबु भाई। आमी कृष्णदास यही विश्वास हईले तो आर दुख नहीं, बस जो समझ लेता है मैं कृष्ण की नित्य दास हूँ, कृष्ण सेवा में संलग्न हो जाता है तो फिर उसको क्या दुख है। वही बात को यमुनाचार्य के कोट भी प्रभुपाद जी ने करके हम बताते हैं। यमुनाचार्य के बारे में जानते हैं, यमुनाचार्य कौन है, हैं? यमुनाचार्य ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे। नाथ मुनि एक महान श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, नाथ मुनि के पोता थे ये, हैं? लेकिन बचपन में तो आके किसी ब्राह्मण के इसको मैंने कि आके पढ़ाई करते थे, छोटे बच्चे थे, आठ नौ साल व दस साल के बच्चे थे तो उससे पढ़ाई कर रहे थे, हैं? लेकिन वो राजा के जो उस जो राजा था, राजा के राज पंडित एक था कोलाहल विद्वत जन कोलाहल बोलते हैं, इतना पंडित है सबको मैंने वो चैलेंज करता था। और इनकी जो आचार्य थे जो यमुनाचार्य पढ़ते वो बड़ा कहानी मैंने पूरा डिटेल है। तो यमुनाचार्य वही स्कूल में पढ़े लेकिन वो जो डिबेट करने के लिए वो जो राजपंडित था वो आता था डिबेट करने के लिए, और जो डिबेट उसके साथ जुक्ति तर्क नहीं कर सकता तो उसको क्या करता है, टैक्स देना पड़ता है तो उसको कुछ कर्जा देना पड़ता, उसको टैक्स देना पड़ता था पंडित को। तो इसलिए आया इनके आश्रम में एक दिन, तो गुरु जी नहीं थे इनके, बोला तो बोला मेरे गुरु जी नहीं है, तो बोला है गुरु जी क्या नहीं है, लेकिन वो थोड़ा व्यवहार असल थोड़ा गड़बड़ी करता, तो बोले कि तू तो व्यवहार ऐसे करता क्या पंडित है तुम, हैं? बोला मेरे गुरु जी के साथ तो आर्गुमेंट बाद में करना, पहले मेरा साथ करके देख, हैं? बोला आर्गुमेंट बोला ऐसा ही करूँगा थोड़ी, राज्यसभा में बुलाओ मुझे, राज्यसभा में जाऊँगा, मुझे मेरे लिए पालिंगी भेजो, हैं? प्रोसेशन जाएगा तभी जाऊँगा ना, ऐसे 8-10 साल के बच्चा ऐसे बोल रहा है, दिग्विजय पंडित के साथ बात कर, बोला हाँ बोलो। राजा जब सुने ये बात को, रानी कहने पर भेज दिए थे इनको, लेके गए प्रोसेशन करके पालिंगी पे बैठा के लेके गए, और वहाँ जाकर उनको पराजय कर दिए थे, किसको, वो राज पंडित को, है कहे कि तीनों प्रश्न उनको पूछे थे, क्या पूछे थे, हैं? मैं जो बोलूँगा उसको प्रमाणित करना कि ये है नहीं, हैं? बोला कि देखो यमुनाचार्य कहे कि ये तुम्हारे माँ बांझ है, उसको बोलना इसको प्रमाणित कर, वो है उसका लड़का हैं? और ये राजा जो है दुराचारी है, प्रमाणित करना इसको, और वो जो रानी जो है, ये रानी ये वैश्या मैंने ये मैंने दुराचारिणी है, वैश्या असती है, इसको वो तो गौरव हो गया, बोला इसको कोई प्रमाण कर सकता है, हैं? ऐसे कैसे कहे, यदि कहेगा वो खुद बैठा रहो उसको माँ को कैसे कहेगा कि उसका माँ बांझ है, तो वो राजा खुद बैठा है उसको बोलता है राजा दुराचारी कैसे बोला तुम कर सकता, तुम बड़ा है चैलेंज, लेकिन ये आसान से इसको कह दिया है। नीति शास्त्र के आधार पर, धर्मशास्त्र के आधार पर जिस स्त्री का एक ही संतान होता है उसको बांझी कहते हैं, उसको भी बांझी कहते हैं। बोले जो राजा को दुराचार, राजा कैसे दुराचारी होता है, क्योंकि प्रत्येक प्रजाओं की जो कर्म है कर्मफल के 1/12 अंश से उसको लेना पड़ता है, किसको, राजा को भी इसका पाप कर्म का भागी लेना होना पड़ता है, प्रजा जो राजा दुराचारी नहीं है, सही आचरण कर रहा है, लेकिन प्रजाओं की पाप को लेने के कारण इसको भी दुराचारी, इसको भी दुराचार इसके पास भी आता है। रानी, अरे राजा को कहा गया कि सारे देवताओं की रिप्रेजेंट करता है, नारायण से नृपति अश्विन भगवान भी कहते हैं, सारे देवता इसके शरीर में निवास करते हैं, तो फिर इतने सारे देवताओं के साथ शंकर तो राजा रह इसी दृष्टि से तो जो भी है बड़ा कहानी है। तो इसलिए राजा के शर्त के अनुजाई आधा राज्य उनको मिल गया था, किसको, जमुनाचार्य जी को। बाद में उसके लड़की को शादी की है और फिर पूरा राज्य बाद में राजा के बाद फिर पूरा उनको मिल गया। सौ रानी को शादी की, सौ रानी उनकी बने, बहुत ऐश्वर्य के साथ ठाट बाट में जीवन बिता रहे थे। लेकिन उनकी जो नाथ मुनि जो थे, उनके जो ग्रैंडफादर, वो सोचे कि कहाँ फंस गया मेरा पोता है। मैथुनागर जीवन में ग्रह मधि सुखम ही तुच्छम, यन मैथुन आदि ग्रह मधि सुखम ही तुच्छम, इसे फंस गया, इसको निकालना चाहिए वहां से है। इसलिए उन्होंने नाथ मुनि जब नित्यलाल में प्रवेश कर रहे थे, उनके एक शिष्य को भेजे, रामन मिश्र को है, कहे जाके उसको निकाल के लाना वहां से, किसको, ये जो पोता मेरा फंस गया उधर, ये जमुना को वहां से निकाल के लाना है, निकालना वहां से, कहाँ सौ रानियों के साथ मैथुनागर जीवन में फंस गया, इंद्र तृप्ति में जीवन का लक्ष्य ये नहीं है, है? तो इसलिए राम मिश्र देखा कि गया, सोचा ये जीवन कैसे इसको निकालना है, ये किसी लिए काम क्रोध है, ये जो सो किसी गुण से कैसे हमारे पास में आता है, है? काम ऐसा क्रोध ऐसा रजगुण समुद्भव महासन महापापमा विद्धेन यह वैरिणाम, ये काम क्रोध ये किससे आते हैं, रजगुण के प्रभाव से, रजगुण के प्रभाव होने से व्यक्ति को काम वासना और क्रोध ये सब जाता है। ध्यायते विषयन पुंस संगस्ते सुपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात श्रुति विभ्रमण है श्रुति भंसात बुद्धिनाश बुद्धिनाशात कहा गया। तो इसलिए भागवत कहता कि तदा रजस्तम भावा कामो लोभा तेज है काम लोभा देश से, अरे जो एक बोलो लाउड में बोलो, सीते सत्य प्रसिद्ध थी, इसका पहले क्या, चित्त एतई रणाविद्धम स्थिते सत्व प्रसिद्ध थी, सत्व गुण से आने से व्यक्ति प्रसन्न चित्त हो जाता है, उसकी मन में काम वासना क्या ज्यादा जागृत नहीं होता, ये रजोगुण से उत्पन्न होते काम क्रोध ये सब। यदि कोई सत्व गुण में स्थिति में आ जाता है, कई उदाहरण है, काल क्लास सुनते थे वो भावमती और किसी कथा सुनते थे ना, जो सत्व गुण की स्थिति में आता है, सत्व गुण के आने से आपको क्या होगा, शुद्धाई करने में, पढ़ा अध्ययन करने में, पढ़ने में, भगवान की भजन करने में, इनमें आपको मृत्यु जन्म है, तो सत्व गुण की स्थिति में आने से अपने आप वो काम वासना ये मार्ग से हट जाएगा, कई उदाहरण है। रामानुजाचार्य जी अपने वो मासी के लड़का था गोविंद को भेज दिए थे, उसका माँ बार बार कहने पर शादी करके आया है, देख नया शादी है, इसके भक्त यहाँ क्या करे, वो जाता नहीं पत्नी के पास, अब भेज दिए रामचंद्र रामानुजाचार्य जी, कहे जाओ 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 जाके पूछ, अब गए लेकिन पत्नी पास तो गए लेकिन भागवत लेके बैठ गए, बस भागवत पढ़े बैठो मैं सुना रहा हूँ, बस भागवत पढ़ते सुने क्या करेगा, वो सात दिन बैठे सात रात बस भागवत सुन रहे, बस उठ चल गए घर चले गए, पत्नी अपने पिताजी घर चला गए रोज है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को इनकी गुरु जी बोले जाओ गृहस्थ जीवन में, क्योंकि इनके पिताजी वो शादीशुदा किए थे, तो उनका पत्नी भी ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गए और घर में जाएगी बस पत्नी बस भागवत लेके बैठे, बोले सुनो कृष्ण कथा श्रवण करना है, हैं गृहस्थ जीवन अर्थात बस भागवत सुनो, शंकर पार्वती शंकर जी ने बैठ के भागवत सुनाते किसको, पार्वती को, हैं अमर अमर अमरनाथ अमर अमरनाथ की अमर कथा, आज जब बैठ के भागवत सुनेगा सत्वगुण की प्रवृत्ति में तो उसके मन में काम वासना कहाँ से जागृत होगा, हैं रजोगुण से प्रवृत्ति होती है सभी, इसलिए सत्वगुण की स्थिति में आने से अपने आप काम वासना डाउन होता है। तो इसलिए हमें ये तो गृह में जीवन में सब फंसे हुए किसी लिए कि रजगुण की प्रवृत्ति के कारण, रज है काम लोभा दयश्चय है। यदि हम कोई व्यक्ति रजगुण तमगुण से ऊपर उठ के किस गुण में आएगा, सत्वगुण, विशेष विशुद्ध सत्वगुण के स्थिति में आएगा, तो उसके मन में काम वासना कहाँ से आएगा है। इसलिए प्रभुपाद जी ने उदाहरण देते कि यमुनाचार्य जी की, ये रामेश्वर जाके बस पहले देखा कि इसको कैसे निकालूंगा, अभी रजगुण की प्रवृत्ति है, राजा है बैठा हुआ, राजा के में तो मिलने के लिए भी जाना संभव नहीं, राजा को मिलना कोई छोटता नहीं, राजा के कैसे मिलेगा। सो उपाय क्या, बोला ये राजा को पहले सत्वगुण की वृत्ति में लाना है। इसीलिए उन्होंने पीछे गेट से पीछे से जाकर किचन, पीछे राजा किचन में पहुंचा और उसे एक साथ दोस्ती किया। तो उसको पता था कि प्रक्रिया विशेष प्रकार के साग, इस साग को यदि खाएगा व्यक्ति कंटिन्यूस खाने से उसकी वृत्ति चिंतन सत्वगुण की स्थिति में आएगा। तो वही करने लगा, साग लेके देता, छह महीना तक खिलाते रहा राजा को, मिल रहा है छह गुण के, छह महीना के राजा को बहुत अच्छा लगता था। छह महीने के बाद हटात एक दिन बंद कर दिया, नहीं गया और है नहीं गए। तो राम मिश्र बोला यार कारे तुम जो साग लाता था डेली, वो जो डेली देता था वो कहाँ आइटम। बोला महाराज वो जो लेके आता था वो तो आज और देखा नहीं, आज आया नहीं है, डेली जो लाता था ना। कौन है वो? मैं कोई एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति आया था और आपको भी मिलने की इसको इच्छा था, लेकिन आप तो मिलने के लिए कोई नहीं देता था, आप तो महाराज हो सम्राट कैसे मिलेगा। मुझे बोलता था कि साग बना के डेली राजा को खिलाना, ये साग देना। राजा कहे कि ठीक है, अब जब आएगा तुरंत इसको मेरे पास लेके आना। कुछ दिन के बाद फिर एक दिन लेके आया साग, तुरंत उसको रोसिया लेके राजा के पास पहुंचाया, राजा को मिलाया। तो फिर वो देखा कि राजा का मति थोड़ा सत्वगुण में आ गया है, राजा तमगुण से आहार के द्वारा मति चेंज होता है। यदि किसकी मति को चेंज करना है तो पहले इसको क्या खिलाना, क्या देना है? प्रभुपाद जी हिप्पियों को क्या किया, पहले खिलाया क्या, प्रसाद खा के ही भक्त बन जाओ। भक्त बन जाने से सारे समस्या समाधान हो गया है। ज्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रसाद खा के ही भक्त बन जाओ। प्रभुपाद जी कहते हैं प्रसाद खाओ। प्रभुपाद जी किसे कितनी भाग्य, प्रभुपाद जी के हाथ से कुकिंग, कृष्ण को अफरिंग, इसको कृष्ण खाए कि नहीं? कृष्ण खाए क्या, मसीद हिला रहे हो? प्रभुपाद जी का कुकिंग प्रभुपाद खाए ना है, हम करें को प्रभु कृष्ण खाएंगे नहीं? कोई शुद्ध भक्त कुकिंग कर रहा था तो आप नहीं कर, अफरिंग नहीं कर रहे, कृष्ण चिन्ह की खाते हैं। तो प्रभुपाद जी कुकिंग कर रहे थे और कृष्ण को अर्पण करके जो अपने हाथ से खिलाते थे, सर्विस करते थे। तो हिप्पी कितने भाग्यवान थे, और कैसे वो हैप्पी, देखो हिप्पी फिर हैप्पी बन गए, आचार्य पद तक प्रभुपाद जी ले गए। मैचो जो बन जो वो लोग इतने नीचे गिरे हुए थे है, प्रभुपाद जी कहने घर बार छोड़ के ये सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पास घूम रहे थे। हाँ ये प्रकृति एग्जाम्पल है, मई चुनाकर सुख है गृहमधि सुखम ही तुच्छम है। ये प्रकृति में खुजलिया खुजलाहट में लगे हुए थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने इनको खिलाया है, केवल प्रसाद बनाकर खिलाए कृष्ण को अर्पण करके है। तो उसी से उनकी चेतना पूरा शुद्ध हो गया, जैसे खाओगे ऐसा ही मन बनेगा, आपकी मन भी ऐसा ही है। इसलिए यदि प्रकृति में इसको सुधारना है तो पहले प्रसाद को चेंज करो। प्रभुपाद ने खिलाया, राम मिश्र भी जाएगी इसको क्या खिलाया, साग दिया, सप्तगुण की वृद्धि कैसे होगा है। तो आहार जैसे आहार खाया हुआ ऐसे ही मन होगा ना, और संग है, आहार और संग बहुत बड़े प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन के ऊपर डालता है। कैसे, यदि खाओगे भगवत प्रसाद खाओगे आस्ते आस्ते भगवत भक्त बन जाओगे है। नहीं, भगवत प्रसाद होना चाहिए, चेतना शुद्ध जो कुकिंग करने वाला की, यदि धन ठीक सत उपाय से आ रहा है। प्रभुपाद जी ने कभी भी हमारे इस्कन में जो प्रसाद सिस्टम, प्रसाद ये डोनेशन मनी का प्रसाद को ने डोनेशन मनी को प्रसाद खाने में नहीं लगाते थे हैं। जो लोग सब देते थे तो, क्योंकि वो कैसे कर्म करके सब धन कमाए उसको लागे खाओगे तो आप उनको कर्म भी वहन करोगे हैं। जो मूर्ख लोग मूर्ख नहीं होते, जो बुलाकर साधुओं को घर में खिलाते मूर्ख है ना क्या, नहीं घर में इसीलिए खिला, जानते कि इनका कर्म थोड़ा रिहाती हो जाएगा, ये भक्त लोग खा के सुकर्म ले लेंगे। तो तो इसलिए प्रभुपाद जी किसी डोनेशन, प्रभुपाद जी डोनेशन मनी जितने बिल्डिंग बनाना, चाहे स्मगलिंग मनी हो कैसे भी हो किसी कोई भी, जैसे इसको बिल्डिंग बनाओ, टेम्पल बनाओ, गेस्ट हाउस बनाए, बिल्डिंग बनाने में लगाते थे। हाँ गो बुक बैग लो, बाहर निकालो, परिश्रम करो और कुछ किताब वितरण करी, जो पैसा आता उसमें से कुछ थोड़े अपने भोजन में लगाओ, तो उससे आपका चेतना शुद्ध रहेगा। तो प्रसाद यदि सुधारोगे नहीं, आप जितनी उपाय कर लो, खाते रहो इधर उधर का खाओगे, आप मन शुद्ध शुद्ध होने वाला चित्त कभी नहीं होगा। हैं, इसलिए प्रसाद को पहले सुधारना और संग। राम मिश्र ने पहले साग खिलाया, सत्वगुण का प्रवृत्ति में राजा आए गए जमुना जमुनाचार्य, फिर इनको मिलने के लिए सुजोग मिला, जैसे कहा याद दिलाया अपने ग्रैंड फादर का, नाथ मुनि का। हैं, बोले नाथ मुनि, बोले हाँ आपके पिता, आपके जो ग्रैंड फादर है वो आपके लिए बहुत बड़े, वो इस नित्यालय में प्रवेश कर गए, लेकिन बहुत बड़े ट्रेजरी आपके लिए छोड़ के गए हैं। क्या ट्रेजरी? आपको उसकी मूल्य काउंट नहीं कर सकते, कितना मूल्य है, ट्रेजरी छोड़ के गए। सात दीवार के अंदर में, उसके अंदर में फिर सात दीवार रंगनाथ मंदिर के कितना गेट पार करना पड़ता है, सात गेट है, सात दीवार के अंदर में, वो कमरे के अंदर में है, उस ट्रेजरी को भी गाड़ करके रहा एक सांप है, ये दिव्य सांप, हजार मानी फणों के साथ ऐसे ही इसको गाड़ करके रहता है। जमुना चे बड़े इंटरेस्टेड हो गए हैं, सौ घर मैंने इतना ट्रेजरी मेरे ग्रैंड फादर छोड़ के गए, लाना है अवश्य मुझे मिलेगा। बोले हाँ बहुत बड़ा ट्रेजरी है आपके लिए है, कहा कि इनको निकाला, और जमुना रचन तबरी निकाल गए, बोले ट्रेजरी है। जाते हुए रास्ता में फिर वही साग खिलाते रहा, मत्ती को चेंज करते साथ साथ भगवद गीता डेली सुनाते रहा है। देही संस्पर्श सजा भोगा दुख जनो एवते आदि अंतवंत कौनते न तथे रमनते बुधा। भगवद गीता के सारे श्लोक इनको रास्ता भर है सुनाते सुनाते गया, भगवद गीता सुनाते, वो पहले भगवद गीता पढ़े थे, अभी तो राजा बन के तो छोड़ गया था, अभी इनकी सब पूर्व चेतना आस्ते आस्ते आ गया, सो क्या घुसने लगा। बोले अच्छा मैं कहाँ फंस गया है, तो उनको समझ में आया, गए ये मैथुन नगर जी, 100 रानियों के साथ में संभोग में लगे हुए थे है। आस्ते आस्ते गीता पढ़ा सुनाते सुनाते इनको लेके पहुंचा दिया कहाँ, रंगनाथ, रंगनाथ जी के सात दीवार। बोला ये देखिए एक एक दीवार पार, सात दीवार पार कर वहां जाके देखा अनंत सज्जा ने, हाँ देखे सोए हुए कौन, रंगनाथ जी, देखा यही है आपके नाथ मुनि, आपके जो ग्रंथपत्र ये छोड़ के गए, ट्रेजरी यही ट्रेजरी है। जो यमुनाचार्य रोने लगे हैं, भगवान की विशेष कृपा हुआ, रोते 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 वही गिर गए हैं, और कभी वापस नहीं आई है राजपथ में। अब राजा बनने के लिए आएंगे, जब इनको शुद्ध भक्ति प्राप्त हुआ, असली संसार की स्थिति को समझे, तभी फिर ये श्लोक कहे जिसको प्रभुपाद जी ने कोट करते हैं, जदव अधि मम चित्त कृष्ण पदारविंद, जब भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में मेरे मोती लग गया, तभी मुझे नव नव रस है आस्वादन की, जो ये भक्ति रस को आस्वादन करने लगा। तदव अधि नारी संघ में, जो 100 रानियों के साथ में एकांत में मैथुनागार जीवन में है और खुजराहट में लगा हुआ था है, तो वो जब मैं चिंतन करने लगा, जदवधि मम ने तदवधि मम नव तदावधि बत नारी संगम स्मय, जब ये स्मरण आता था नारी संगम एकांत में रानियों के साथ विहार करता था, तो मुझे वो दृश्य जब मेरे मन में आ जाता, कभी मैं थूकने के तुरंत विकृत हो जाता मुख, मैं बार बार थूकता था कि कदर्ज जीवन मेरा बीत गया है। भवती मुख विकार सुष्ठु निष्ठ वरंग, यमुनाचार्य अपने एक्सपीरियंस को स्वयं कह रहे जीवन कैसे एक्सपीरियंस हुआ। तो इसलिए ये है रसगुल्ला, ये है गुलगुला, मैथुन आकार जीवन। जब तक कोई रसगुल्ला नहीं खाया वो क्या कहेगा, गुलगुला खा के ही बस बोलता है यही सुख है यही आनंद है। ये मैथुन आकार जीवन ऐसा ही है, स्त्री पुरुष जब मैथुन आकार में जीवन में लगता है, बोलते कि यही है केंद्र बिंदु और यही असली सुख है, ये गोरस गुलगुला खाने वाले हैं, जो प्रकृति में भक्ति का सुख को आस्वादन करता है। जैसे यमुनाचार्य ने किए हैं, वा धनुर्दास वाले एक उदाहरण दिया जाता है, धनुर्दास, धनुर्दास की कथा आप सुने, रामानुजाचार्य उसको कैसे उद्धार किए हैं। हेमाम्मा उस समय पूरा जो वो पूरा वो था मिस इंडिया है, इतनी सुंदरी थी, तो उसका बहुत आकर्षण उसके सौंदर्य के प्रति इसके था, किसका, धनुर्दास का। तो संग रंगराज की इतनी बड़े विशाल प्रोसेशन निकला हुआ था, लेकिन सभी लोग रामानुजाचार्य स्वयं बैठे हुए रंगनाथ जी के रथ में नीचे, और वो सारे लोग नाचते गाते भक्त लोग कीर्तन में आनंद ले रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है वो, इसको सब भगवान किस मुखारविंद को देख रहे हैं, ये किसका मुखारविंद को देख रहे हैं, ये देख रही वो हेमाबा की मुख देख रहा, और छत्र छत्री पकड़ा हुआ उसको छत्री दिखा रहा और उल्टा चल रहा, सब लोग उल्टा चल रहा, उसको देख उसका मुख को पकड़ गया तो सामने खड़ा होकर छत्री दिखा रहा, उसके मुख को देखते हुए पीछे चल रहा, ऐसा गिरेगा तो पीछे कोई गाढ़ा होगा तो उसका हालत क्या होगा। इतने बेशर्म आदमी है, सारे लोग का बीच में क्या कर रहा है ये, रामानुजाचार्य आचार्य समझ गए हैं कहां कितनी पतित हो गया ये है, पर दुखे दुखी। इसीलिए कहते कि साधु संगाए बिना महत पद रजोभिषेकम, राहुगण तपसा न जाती न इज्जया, सूर्य जलाग्नि सूर्य श्लोक है, लेकिन जब तक वो ये तपस्या की भाई ये ऑस्टेरिटी के माध्यम से यदि विष्णुदेव कहे ब्रह्म सुख सुखम अनंतम तपोदिव पुत्र का, लेकिन ये तपस्या करने से भी कोई नहीं बच सकता है, जब तक किसकी कृपा नहीं होगा, किस महान वैष्णव है। कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार न है क्षय, संसार के प्रति आकर्षण नहीं चिन्ह जाने वाला है, मैथुनाकार जीवन के प्रति आकर्षण नहीं जाएगा, स्त्री पुरुष का आकर्षण नहीं जाएगा, कब तक आए? जब तक किसी महान संत की कृपा नहीं होती है। साधु संग ने महत सेवा बिना कोनो कर्मे भक्ति न है, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार न है क्षय। अरे किसी महत पुरुष की कृपा नहीं होने से तुम कहां से कृष्ण भक्ति मिलेगा, रसगुल्ला कहां से मिलेगा खाने के लिए आए? ड्रेस को बदलने से, ड्रेस तिलक कंठी ड्रेस पहनने से कोई हो जाता है भक्त नहीं, वो कहते पैसे पैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते नाके तिलक गलाए मारा माला सवाए कलीट चला है? लेकिन बेचारा जैने जो क्या बोल रहा था, तो महत कृपा, तो अभी जब रामानुजाचार्य देखे इसको इच्छा हुआ इसको उद्धार करें, इसको उद्धार करूं क्या पर कहाँ फंसा हुआ ये है, कहाँ फंसा हुआ ये, क्या कर रहा है ये, बोले इसको बुलाओ, बुलाओ मेरे पास, गए बुलाने के लिए, आने के लिए तैयार नहीं, बोले खींच के लेके आओ, पकड़ के लेके आए, अब वो क्या करेगा, आना नहीं चाहता, जबरी इसको पकड़ के चार साइड पर 10-15 लोग पकड़ के लेके आए, बड़ा डिस्टर्ब हो गया था। बोले रामानुजाचार्य देखा था आचार्य, बोले तुम की क्या कर रहा, तू उस स्त्री का मुख को देख रहा क्या है, ना देखिए आचार्य ये जितने सुंदरी है इसका मुख मुखड़ा कितना सुंदर है, हमको दिख रहा कंदर पर कोटी कमोनी, वो कामी पुरुष को तो वो तो वैसे किसका क्या अच्छा देखेगा, स्त्री का शकल है, बोले कितनी सुंदरी देखो, कितना अच्छा है उसके मुख, कितना सुंदर, बोले ऐसा कोई, रामचंद्र बोले कि इससे अच्छा सुंदर यदि रूप तुमको दिखाऊंगा, मुख मुखड़ा दिखाऊंगा तू छोड़ देगा इसको, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे विश्वास ही नहीं, बोले नहीं मैं तुमको दिखाऊंगा, आज शाम को जाएंगे रंगनाथ जी के दर्शन करने, तुम आना मेरे साथ। बोला रंगनाथ, अरे कितनी बार गया, हजार बार रंगनाथ को देख चुका, इसमें क्या होता है, बोला ठीक है एक बार आज तो देखे, बोला ये हेमामा का जो मुख है कितना सुंदर आचा है, तो रामानुज आचार्य फिर शाम को उसको भेजे दो चार लेके चले, बोले चल पहले रंगनाथ है, रामानुजाचार्य प्रार्थना किए किसको, रंगनाथ जी को, हमारा लिए जब वैष्णव ठाकुर प्रार्थना करेंगे तभी कृष्ण मुहर प्रार्थना में सुनते, हमारा प्रार्थना नहीं सुनते हैं, एक बद्धजीव का व्यक्ति का प्रार्थना तो भगवान नहीं सुनते, वो जानते ही अभी कुछ बोलता काल को फिर उसका बात बदल देगा, ये ठीक नहीं है, अभी अभी बोला कुछ काल को फिर और कुछ मिल जाएगा, धन 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 और स्त्री मिलेगा फिर मर छोड़ी भाग जाएगा, है ना। है नया भक्त, जैसे नया भक्त आता है कोई आए जैन जैन कर लिया, कोई बोलेगा चलो तुमको भिसा देता हूँ अमेरिका ले चलूंगा, ये करूंगा, विदेशी लड़की की शादी करोगे तुम्हारा जीवन भाग गया छोड़ के भक्त, तो भाई वो क्या करेगा। तो रामानुजाचार्य पहले हाथ जोड़ के प्रार्थना किया रंगनाथ जी को, प्रभु ये मूर्ख को थोड़ा आपका आपके जो कंदर्प कोटि कमनीय विशेष अपने मुख थोड़ा सा कि एक झलक केवल इसको दर्शन करा दीजिए, प्रार्थना की रंगनाथ जी प्रार्थना, इसके बाद कहे इसको प्रार्थना करने के बाद कहे कहते देखो भगवान को। धनुर्दास देख रहा था, क्या देख रहा आज है भगवान की वो मुखारविंद से और मुख उसके आंख और भगवान की आंख से मिल गया और वहां से हटता नहीं है, अष्टंग धारा गिरने लगा, गद सुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा, रो रो कर वही गिर जाने तक है देखते रहा है? क्या देखा, तब से वो हेमा बा का मुख और देखने की इच्छा किया है। अवश्य बाद में उनको शादी करा दे रहा हूं, लेकिन फिर भी ग्रह मेधी जीवन में नहीं रहे, मैथुन सुख आगार जीवन में नहीं, महान भक्त बने हैं। बाप में सन्यासियों को भी कहे कि अपने रामानुजाचार्य को भी कहे कि ये तुमसे भी श्रेष्ठ है रामानुजाचार्य। फिर बाप में वही धनुर्दास के हाथ पकड़ के जो कावेरी से स्नान करके आते थे, एक हाथ एक तो उनके एक हाथ वो धनुर्दास के कांध पर हाथ रख के आते थे। सन्यासी लोग सोचते थे अरे क्या है, हे धनुर्दास कितना पति था ऐसे था, लेकिन इनको सीखा है, इनको रामानुजाचार्य समझाया किस प्रकार वो धनुर्दास के जीवन सन्यासियों के जीवन से भी श्रेष्ठ था, क्योंकि विशेष कृपा प्राप्त कर दिया किसके। हाँ ऐसे यदि कोई महान वैष्णव आचार्यों की कृपा प्राप्त करता है, किसी वैष्णव की कृपा प्राप्त करता तो फिर ये इसीलिए तो इसकन के अच्छा जो मलेच्छ जोवन जवन इतनी नीचे गिरे हुए थे उनको प्रभुपाद ने कहाँ तक उठाया, आचार्य के पद पर अधिष्ठित कर दिया है। महत कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति न है, अरे भक्ति ही केवल आपको बचा सकता किससे, मैथुन आगार जीवन से, दूसरा कोई नहीं बचा सकता, ना कर्मी ना ज्ञानी ना जोगी बच सकता कोई। जोगी के बारे पिछले श्लोक में प्रहलाद महाराज कहे ये बड़े बड़े जाते हुए हिमालय में कहीं पर गुम्फा में बैठकर अपना क्या करते प्रार्थना न परार्थ निष्ठा, दूसरे के हित कामना नहीं करते, बैठ के अपना हित चिंतन करते हैं, मेरे से ही जीवन नहीं। जब तक वो परार्थ निष्ठा नहीं आएगा, जब तक वो भगवान के पने वो वैष्णव नहीं बना है, पर दुखी दुखी नहीं हुआ, तब तक मैथुन आकार जीवन से नहीं बच सकता है। इसका आकर्षण रहेगा फिर वो कितने जो ध्यान कर ले जो कुछ कर ले है। पिछले श्लोक ये कनेक्टेड है, इसके पिछले श्लोक में कहते हैं प्रहलाद महाराज इसका पिछले श्लोक में कहे हैं, चाहे ये सब कृपण यही इनको कृपण है जो आपके प्रचार में नहीं लगे हुए हैं, ना नैतान विहाय कृपण विमुख्य एको नान्यं तदन्य शरण भ्रमतो नुपश्ये। जब तक आपके ये आये नहीं शरण में परार्थ निष्ठा नहीं है, दूसरे के हित के लिए पूरे जीवन को संपूर्ण उत्सर्ग नहीं किया कृष्ण सेवा में भक्तों को, ने तो प्रभुपाद ने इसलिए कहे प्रचार ही सार है। तुम्हारे पास प्योरिटी हो सकता है, लेकिन प्योरिटी होते हुए भी यदि इसको पिचिंग में नहीं लगाया फिर वो बेकार है, है? जब तक व्यक्ति कृष्ण के प्रचार में या किसी साधु के शरण में आकर साधु का आदेश को जीवन में नहीं उतारा, तब तक वो मैथुन आकार जीवन में वो मुक्त नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर ले वो है। तप जोगो ज्ञान ध्यान आगे आगे श्लोक में कहेंगे सब प्रहलाद महाराज है, जो कोई संभव नहीं है। जब तक शुद्ध भक्ति को अपनाया नहीं, पर दुखे दुखी नहीं बना, प्रचार को अपनाया नहीं, प्रीचिंग इज द एसेंस, बुक्स आर द बेसिस, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्यूरिटी इज द फोर्स, प्यूरिटी इज द प्रिंसिपल। जब तक वो कृष्ण ये फॉलो नहीं किया तो कहाँ से कैसे ये मैथुरागार जीवन से मुक्त होगा। हाँ इसलिए प्रभुपाद ने श्लोक लेकर ये यमुनाचार्य को उदाहरण देते हैं, यमुनाचार्य श्लोक इसलिए कोट करते हैं। लेकिन जब तक हम ऐसे ही सत्वगुण के सत्वगुण के वृत्ति व सत्वगुण अर्थात विशुद्ध सत्व स्थिति में नहीं आए हैं। निस्त्रैगुण्य भवार्जुन त्रिगुण विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, ये देवता लोगों को भी सत्वगुण माने जाते लेकिन उस सत्वगुण के बारे में नहीं कहा जा रहा, भक्तों लोग हैं भक्तों के जो सत्वगुण में रहते हैं ये त्रिगुणातीत है। तीनों गुण के परे हैं विशुद्ध सत्व स्थिति में, तो स्थिति में आओगे कैसे आओगे ना, जब किसी जो है जिस महान भक्त को इस स्थिति में है तो वो आपको उस स्थिति में ला सकता है। इसलिए भक्तों की शरण में आना और शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्ति जब तक हम प्रारंभ नहीं किए, प्रभुपाद इसलिए कि समाधान दे रहे हैं केवल नहीं ये कहे के इस श्लोक का अंतिम समाधान दे रहे हैं कैसे हम ये मथुराकार जीवन को तथा कथित ये जो खुजलाहट को कैसे इससे मुक्त कैसे हो सकते हैं, इसके मेडिसिन यही है। मेडिसिन क्या है, एनएची औषधि माया नासीवार लागी, एनएची औषधि माया नासीवार लागी, हरिनामा महामंत्र लाओ लाओ तुम्हें मागी है, इसको लो इसको जपा करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो बेसे आने से माया देवी खुद ही आने से क्या होगा, आए हुआ हरिदास ठाकुर का कुछ बिगाड़ सके हैं, बोले वैसे आ गई थी फिर बाद में स्वयं माया देवी आ गई तो कुछ फर्क पड़ा ना क्या हरिदास ठाकुर हैं, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। जब हमें शुद्ध भक्तों की शरण में शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल, जब तक हम छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे केवा, जब तक हम वैष्णव की सेवा किए नहीं हैं तब तक कहाँ से ये बचेंगे, ये बीमारी से कहाँ बचेंगे हैं, ये खुजलाहट की बीमारी तब तक नहीं छोड़ेगा हैं। जब ही कभी किस शुद्ध भक्ति के चरण में शरणागत होकर उन्हीं की सेवा में जीवन को उत्सर्ग करेंगे तभी बच पाएंगे हैं, तभी इसका मेडिसिन। आज मकर संक्रांति है, आज मकर संक्रांति मकर राशि में आज हैं संक्रांति का अर्थ संक्रमण, मकर राशि में आज संक्रमण किसकी है, प्रवेश होते सूर्य देव का हैं सूर्य आज, तो इसलिए मकर राशि का चार संक्रांति ने इसलिए 12 महीने में 12 संक्रांति है लेकिन चार उसमें मुख्य कहा गया, मेष संक्रांति मेष में पहले वैशाख संक्रांति पणा संक्रांति कहते हैं वैशाख संक्रांति, कर्कट संक्रांति फिर तुला संक्रांति और ये मकर संक्रांति, ये चार संक्रांति विशेष कहा गया। इसमें सब इसी में विशेष में लोग क्या करते हैं, स्नान दान आदि करते हैं, किसी पवित्र स्थान में जाकर स्नान करते हैं। मकर संक्रांति मकर मेला कहाँ लगता है, गंगा जमुना सरस्वती के संगम में इलाहाबाद में मकर मेला अभी चलेगा, एक महीना चलेगा पूरा है माघ महीने, पूरा संकल्प ले कि लोग एक महीना रहते हैं माघ स्नान करते डेली हैं, और प्रभुपाद जी भी कोर्ट किए हैं चंद्र मेरे समय नहीं हुई बोलने के लिए, मकर स्नान के बारे में भी लिखे लेकिन बाद में कहते कि ये मकर स्नान क्या करेगा, ये मकर स्नान में कुछ फायदा नहीं है, ये कृपण लोगों का काम है जो मकर लोग मकर में डुबकी लगाने ये करने बस हैं, जिनको सुख क्या चाहिए देह सुख चाहिए, ना ही मागी देह सुख विद्या धन जन है, जिनको ये सब चाहिए प्रभु तब पद जुगे मोरो निवेदन ना ही मागी देह सुख, ये देह सुख में सबसे बड़ा सुख कौन सा है, मैथुन सुख है, ना ही मागी देह सुख विद्या धन जन, तथाकथित सांसारिक विद्या के डिग्री कविता बड़ा दिग्विजय पंडित बनने की मेरी इच्छा नहीं है, नहीं मागे देह सुख विद्या धन विद्या तथाकथित अविद्या जिसको हम विद्या कहते संसार में है, विद्या धन धन में जन ये सब फॉलोअर्स ये सब नहीं चाहिए है, न धनम न जनम न सुंदरिंग ये नहीं कह पहुंचे इतने महापुरुष कैष्टक में क्यों कहे, न धनम न जनम न सुंदरिंग न कविता है, ये नहीं चाहिए, ये सब भक्ति की बाधा है बाधक है, इसी से हम फिर फंस जाते हैं संसार में। तो इसलिए ये जो जाते कुछ लोग मैंने जो मकर मेला में जाते स्नान करते हैं, एक महीना रहते हैं मकर स्नान पुण्य कमाते हैं है? तो वो सब हमारा उद्देश्य नहीं है, आज के दिन गंगा सागर में मेला होता है, गंगा सागर किसको कहते हैं, त्रिपथ गामिनी गंगा है, स्वर्ग से मर्त्य लोक में फिर पाताल लोक में भी जाती है, स्वर्ग मंदाकिनी फिर गंगा फिर नीचे जाती भोगवती पाताल लोक में। ये मर्त्य लोक में बहते हुए हैं भागीरथी, भागीरथी इनको आगे लेके गंगा का मुख्य तीन धारा है। एक धारा तो बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से आती है, क्या कहते हैं उसको, हैं बद्रीनाथ से अलकानंदा, केदारनाथ से मंदाकिनी और गंगोत्री से भागीरथी। तीनों धारा मिलके हरिद्वार में आके गंगा बन जाते हैं, गंगा हरिद्वार में मिलते हैं, सब सारे धारा मिलते हैं। तभी और तो कई छोटे छोटे धारा है, हिमालय के जितनी भी धारा है प्रकृति में ये सब गंगा की धारा है, हैं ऐसे ही पुराण में वर्णन है। क्योंकि शंकर जी की जटा में जब गंगा गिरती है छिड़क की चारों साइड फैलती है, चारों साइड फैल जाती है, छोटे छोटे सारे छिड़क की जाती हैं, तो इसलिए वो हिमालय में सारा छिड़का हुआ है, गंगा का ही सब धारा है। सो आके फिर हरिद्वार मिल के फिर आज चलते हैं आगे। तो ऐसे चलते चलते आप तक गंगा अवतरण के बारे में तो जानते हो जाए बहुत कुछ कथा। फिर जानू मुनि रास्ते में इनको हैं पूरा पिन निकाल लेते, फिर जानूदेव जानू मुनि के जंघा से फिर निकाल लेते, बाद दक्षिण कर्ण से कहीं किसी पुराण में लिखा हुआ दक्षिण कान से जेनेऊ ऐसा रखते हैं, दक्षिण कान में ये पवित्र कहते हैं ये गंगा है। यहाँ जानू मुनि कई जगह लिखा हुआ, किसी पुराण में जंघा से निकल गई, कोई जगह से लिखा है कान से निकल गई दक्षिण कर्ण से। तो इसलिए फिर निकल के वो जाकर वहीं मिलती हैं समुद्र में, कहाँ पर सागर के साथ मिलती है। जितने नदी सब मिलते हैं समुद्र में, समुद्र में मिलने के बाद उनके नाम सब मिट जाता है, कोई नाम और बदलता है वो नदी का नहीं, समुद्र मिल गया बस नदी मिल गया समुद्र में। लेकिन गंगा समुद्र में मिलने के बाद भी उनके नाम रहता है, क्या कहते हैं उसको, गंगा सागर, खाली सागर नहीं कह, गंगा सागर, समुद्र गंगा का नाम फिर भी रहता है। क्योंकि त्रिपथ गामिनी समुद्र को भेद करके भी नीचे जाती है भोगवती पाताल लोक में है, तो इसलिए गंगा वहाँ कपिलमुनि का आश्रम है गंगा सागर में। कपिलमुनि बैठे सगर भगीरथ क्यों ले तपस्या किया था अपने पूर्वजों को उद्धार करने के लिए, गंगा अस्थि। आज भी हम लोग सोचते कि हम भी लेके हड्डी लेके फेंक देंगे गंगा में, हमारा पितर भी उद्धार हो जाएगा। तो शंकर ने वो सगर जी के सगर वंश को उद्धार करने के लिए गंगा भागीरथी तपस्या करके उन्हें लाए थे, वहीं पर जाकर वो समुद्र में मिले थे गंगा सागर। आज बहुत बड़ा मेला वहाँ पर भी है, आज गंगा सागर मेला है, मकर संक्रांति में बहुत बड़ा मेला वहाँ भी लगता है गंगा सागर मेला। कहते दूसरे मेला में जाओ एक नहीं, अन्य सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, बस सभी तीर्थ है, सब तीर्थ करने वाले सारे कुंभ मेला जैसा बहुत बड़ा आयोजन होता है उधर है। तो गंगा गंगा लेकिन भक्तों के लिए क्या करना है, गंगा माता गोस्वामी नहीं वो भी सोचती थी मैं बारहवीं स्नान करने इनकी इच्छा था, लेकिन गुरु आदेश था कि रहकर पुरी में रहकर क्या करना, भागवत का प्रचार करना है। इसलिए सोचती मैं क्या करूँ, गुरु आदेश नहीं है मुझे जाने उधर है, गुरु आदेश है यहाँ रह के भागवत का प्रचार करना, लेकिन मन में थोड़ा दुखी हुई है। जगन्नाथ समझ गए, जगन्नाथ रात में सपने में आए, बोले क्या तुझे बारहवीं स्नान करना है, गंगा स्नान करना है, अरे ये देखना नहीं समुद्र जहाँ रह रहा उसके बाजू में ही है वही गंगा है, आ तुझे वहीं पर गंगा देवी साक्षात प्रकट होकर तो स्नान स्नान कराएगी, आ जाना रात को 12 बजे 1 बजे आ गई कृष्ण हाथ। तो गंगा देवी उनको भसा के लेके सीधे पहुंचा दिए कहाँ, जगन्नाथ के चरण में है। जगन्नाथ जी के मुझे क्या सोच रहा है, ये लकड़ी का विग्रह सोच रहा ना क्या, मेरे ही चरण से निकली है ये कौन, गंगा है। इसलिए भक्त बोले तू वहां क्या जाएगा, देख गंगा माता गोस्वामी को भाषा के लिए बस जगन्नाथ के चरण में छोड़ दी यही गंगा है। इसलिए भक्तों को क्या करना है, इधर भक्त लोग सिर्फ भक्ति में लगा रहते हैं, गुरु आदेश में जहाँ भी जहाँ जैसे आदेश है उसी आदेश को पालन करके ही ये मैथुन आकार जीवन जीवन से मुक्त हो सकते हैं। मैथुन जुगा इसका रहस्य यही है कि किसी महान शुद्ध भक्तों की कृपा जो प्राप्त कर लेते हैं, इसीलिए भागवत में कहा गया जैसे कि इससे मूल्यवान कुछ नहीं है, क्या सबसे मूल्यवान चीज़ है संसार में, एक क्षण वैष्णव का संग है, नो स्वर्गम नो पुनर्भवम है, तुलयाम लवे नापी नो स्वर्गम नो पुनर्भवम है। नेक्स्ट लाइन भगवत भक्त संघस्य मर्त्या नाम किम उता आशीष। ये मर्त्य वासियों के लिए उससे बोले मन चीज क्या है, एक क्षण का जो संघ है वैष्णव का, न उसके साथ स्वर्गों को स्वर्गो प्राप्त करना भी तुलना किया जाता नहीं। कर्मकांड लोग जैसे कर्मकांडी लोग लगे हुए कर स्वर्गो प्राप्ति करने, नो स्वर्ग न पुनर्भव न ये मुख्य प्राप्त करना भी उसके साथ तुलना की जाती है। भगवत संघ में तो भक्तों संघ में तो हमको भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त हो जाता है। आए? हम सब सभी दिन के लिए ये मैथुन आकार जिगर जीवन से उद्धार हो जाते हैं, भगवान के चरण कमल में प्रेम प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए आज मकर संक्रांति ये तो एक ही है क्या, गंगा सागर मेला होता है और ये आज सूर्य आज मकर राशि में सूर्य संक्रमण करते हैं। आज ये मकर मेला को पूरा भारत में मनाया जाता है, हैं इसको कई जगह में हम ये सिर्फ यूपी में और बिहार में है, खिचड़ी बांटते हैं लोग, हैं इसे खिचड़ी उत्सव कहते हैं, खिचड़ी बने बांटते हैं। और बंगाल में उड़ीसा में मकर चिड़ा और चिड़ा दही केला उसमें सब क्या ईख क्या बोल आँख बोलते आँख क्या बोल गना काट के सब डालते हैं, सब करके वो को मना के फिर बांटते हैं। मेला बनता है बैठ तो पूरा बहुत 7 दिन 8 दिन 15 दिन तक मेला चलता है सब जगह जगह पर, हैं सब मकर मेला कहते हैं। और ये कहीं पर पोंगल बांटते हैं, कहाँ आज पोंगल बन रहा है ब्रह्मचर्य ये प्रसाद में, कोई मुझे बोला था आज पोंगल बन रहा है। ये पोंगल उत्सव बनाते कहाँ, तमिलनाडु में है, दक्षिण भारत में पोंगल बनाते हैं, मैंने राइस और राइस मैंने नया सब ये सीजन में साथ में राइस जो गांव में जो उड़ीसा में बंगाल में जो राइस खेती में जो होता है वहाँ तो ऐसे ही कैनल सिस्टम नहीं, वो पूरे हैं पूरा साल भर कर ये सीजन है, मार्गशीर्ष महीना सब पौष महीना में सब काटते हैं, पहला खाना शुरू करते हैं, चावल का खाना पहला है, ये नया धान जो आता है उसमें निकल के राइस खाते हैं मकर संक्रांति। तो ये पोंगल वहाँ तमिलनाडु में है, तमिलनाडु एरिया में पोंगल, केरल में वो तो अयप्पा, केरल में अयप्पा का बहुत मेला, लाखों संख्या में लोग चलते हैं अयप्पा है। तो ऐसे ही सभी स्टेट में पूरा भारत में मकर मेला मनाते हैं, हैं कई स्थान में अलग अलग नाम है उसके बारे में, अलग अलग कुछ रीति में थोड़ा चेंज चांस, लेकिन ये सभी लोग पालन करते हैं। हैं आज उत्तरायण गति है, कहते उत्तरायण है, भगवदगीता में भी भगवान कहते हैं षडमासा उत्तरायणम, 6 महीना उत्तरायण, मकर संक्रांति से सूर्य मकर से जब संक्रमण करते हैं उसे उत्तरायण 6 महीना हैं, माघ फाल्गुन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, 6 महीना उत्तरायण गति। उत्तरायण गति और दक्षिणायन गति इसमें कहा गया कि जो उत्तरायण गति में जाता है वो जो शरीर त्यागता है उसको ऊर्ध्वगति मिलता है, और दक्षिणायन गति में जाता तो अधोगति हो जाता है, लेकिन ये सब कर्मकांडी लोगों के लिए है, साधारण व्यक्तियों के लिए, भक्तों के लिए ये रूल काम नहीं करता है। भक्तों लोगों के लिए तो सबसे अच्छा महीना कार्तिक महीना में शरीर त्यागना, लेकिन कार्तिक महीना उत्तरायण में आता ना क्या दक्षिणायन में रहता है भक्तों के लिए इसमें कुछ लेना देना नहीं होता है। अंत काले जमांग नित्यम स्मरण मुक्ता कले वरम स्वप्रयाति जमत भाव नाति अत्र संशय, से गीता में कहते शरीर अंत समय में जैसे चिंतन करके शरीर से बहुत मिलेगा उसको गति, साधारण कर्मकांड के आधार पर इस फिर उत्तरायण दक्षिण जो कि लोग जो लोग का लक्ष्य है कि सत्य लोक मैं ब्रह्म लोक तक प्राप्त करना, तो वो इसी उत्तरायण को प्रतीक्षा करते हैं। ये उत्तरायण भक्तों के लिए कुछ विशेषता नहीं है, भक्तों को किसी भी कहीं भी रहें, स्वर्ग में रहें नरक में रहें व कहीं भी रहें, तो उसका काम है सिर्फ भगवान की भक्ति करना, भजन में लगा रहना है। इसकी एला भीष्मदेव के प्रयाण कहते कि यदि कहा जाता है महाभारत में जैसे वर्णन आता कि भीष्मदेव सोचते थे कि शरीर को त्यागने के लिए उत्तरायण गति में है, जैसे मैंने क्योंकि वो अष्टवसु में से एक वसु हुए हैं, तो उनके सेवा में महाजन लोग अपने सेवा को बड़ा समझते हैं, किससे भगवद्धाम जाना उससे भी अधिक श्रेष्ठ मानते किसको सेवा को। भीष्मदेव अष्टवसु के रूप में एक सेवा करते हैं, अभी भी 12 महाजन कोई भी भगवद्धाम में नहीं है, है कोई गया भगवद्धाम है, स्वयंभू नारद स्वयंभू कौन ब्रह्मा नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद सबके हिस्ट्री देख लो 12 महाजन के, सभी अपना अपना जगह में रहकर स्थाने स्थित्वा सुतिगतां तनोवाक मनोभी, अपने अपने जगह पर रहकर वो सेवा में लगे हुए हैं। सभी अपना अपना जो भगवान ने जो सेवा दिया वो सेवा सेवा को बड़ा मानते हैं हैं। भगवद्धाम में जाके जो सेवा नहीं है तो वो भगवद्धाम जाना भी नहीं चाहते हैं। सेवा भक्ति का अर्थ प्रेममयी सेवा है। तो इसलिए विश्वदेव कहेंगे मैंने उत्तरायण गति कहा जाती कि प्रतीक्षा किए यदि वो हैं भीष्म मकर संक्रांति में शरीर नहीं त्यागे, शरीर तो त्यागे भीष्माष्टमी में आइए फेब्रुआरी महीना में हैं, लेकिन उत्तरायण गति में, उत्तरायण गति शुरू होगा तो फिर उपदेश देना शुरू कर दी। मैंने भगवान लेके आए इनको सब पांडवों लोगों को, पांच पांडवों को, कुंती को इन लेके लाए, लेके आए भीष्म के पास। भीष्मदेव उपदेश देते रहे, अंत में विष्णु सहस्रनाम जो पाठ करते, विष्णु सहस्रनाम इनके मुखारविंद से निकल रहा। किसके मुखारविंद से? भीष्मदेव बोलते रहे हैं, विष्णु सहस्रनाम बोलते बोलते समाधिस्थ हो गए हैं। तो इसलिए भीष्माष्टमी जो आएगा, अभी भीष्माष्टमी कैलेंडर भी आता है वैष्णव, भीष्माष्टमी में वो शरीर त्यागे, लेकिन वो भी उत्तरायण को प्रतीक्षा किए थे, कहा जाता है भीष्मदेव प्रतीक्षा किए थे। लेकिन हमारे लिए ये सब जरूरत नहीं, हमारा काम है जो भगवान की इच्छा उसमें हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको सदा भगवान के भक्ति में लगा रहना है। मम जन्मनी जन्मनी स्वरे भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि, अहेतु की भक्ति है, यही हमारा लक्ष्य है। और मकर संक्रांति और कई दान पुण्य बहुत कुछ कर्मकांड रीति में बहुत कुछ कहा गया है। आज जो जैसे संक्रांति, संक्रांति संक्रमण करते हैं, सूर्य संक्रमण करते हैं एक एक राशि में। आज मकर राशि में संक्रमण करते हैं, आज से दिन के दिन शुरू होता है। किसका? देवताओं का, देवताओं का दिन है। हमारा दिन छह महीना में दिन होता है, हमारा छह महीना होने से देवताओं के दिन होता है, हमारा छह महीना फिर और छह महीना में रात होता है उनके है। तो इसलिए आज से दिन शुरू हो गया, उनका उनका दिन आज से शुरू हुआ। किससे? देवताओं के दिन हुआ है आज से, आज से छह महीना ये दिन है, इसके बाद फिर रात आएगा, देवताओं की छह महीना रात हो जाएगा। इसलिए देवताओं के दिन है, देवता लोग सब जग गए अभी है, देवता लोग सब जग कर जग गए, जग के बोले क्या कर रहे हैं मनुष्य लोग, इसलिए उनको भी जगा रहे हैं। जीव जागो जीव जागो गौरा चंद्र बोले हैं, बोले देवता भी जग गए तुम भी जागो सुबह। तो इसलिए जग कर क्या करना चाहिए है? भक्ति विनोद प्रभुर चरणे पड़िया सही हरि नाम मंत्र लैल मगिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हैं। मकर संक्रांति बारे तो पूरा क्लास केवल एक ही केवल मकर संक्रांति बारे बड़ा हो सकता, लेकिन जर हैं कर्मकांडी लोग चाहते हैं मकर संक्रांति को विशेष रूप में स्नान करना है, करना है। वो जब सैनोड़िया ब्राह्मण था चैतन्य महाप्रभु जब आए थे वृंदावन में, इलाहाबाद से नहीं, वो वृंदावन से वो प्लान करी बोल रहा था उसको, कह मकर संक्रांति पहुँच जाएंगे जिस दिन आप कहाँ इलाहाबाद में पहुँच जाएंगे तो माघ स्नान की मौका हमको मिलेगा है, क्योंकि थोड़ा कर्मकांडी रीति था। आज का दिन हमारे गौड़ीय संप्रदाय के भक्तों के लिए विशेष महत्व है। किसके लिए? आज का दिन चैतन्य महाप्रभु संन्यास, ये भी एक क्लास हो सकता है केवल चैतन्य महाप्रभु संन्यास के बारे में है। संन्यास चैतन्य महाप्रभु आज संन्यास ग्रहण किए थे, किससे? केशव भारती है। केशव भारती कौन था? अक्रूर। कृष्णलीला में कौन था? अक्रूर, जिन्होंने सारे कृष्ण को सारे गोपियों ने ब्रजवासियों से छीन कर ले गया था, कहाँ ले गया था? मथुरा। उसी प्रकार ये केशव भारती ही नवदीप वासियों से चैतन्य महाप्रभु को छीन लिया संन्यास देकर। इसलिए इनको क्या गौरव गण दीपिक में कहा गया कि केशव भारती कौन है? ये अक्रूर है, कृष्णलीला के अक्रूर है, है? वो जाकर बड़ा बड़ा करुण लीला है सची माता के क्रंदन, सच जो संन्यास लीला बहुत पैथेटिक है। चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले के जाते हैं, लेकिन किस ले जाते हैं? सारा जगत के कल्याण के लिए, सारे जगत के कल्याण के लिए हैं अवतरित हुए हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। जीवे दया करी सो पार्षद सियो धाम सह अवतरी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दान सिखाए शरणागति भकतेर प्राण। चैतन्य महाप्रभु आज के दिन सन्यास घर त्याग कर सन्यास लेने के लिए चले गए थे। घर में कौन था? वृद्ध है, वृद्धा माता और 16 साल की उम्र के उनकी पत्नी कौन? विष्णुप्रिया है। विष्णुप्रिया जब वो रो रही थी, बोल रही थी क्या मैं सुन रहा हूं आप सन्यास ले जाओगे। उस अंतिम रात बहुत है चैतन्य महाप्रभु चैतन्य मंगल में जैसे कहा था, उनको विष्णु स्वयं नारायण रूप में दर्शन दिए और उनका मोह नष्ट कर दिए। किसका? विष्णुप्रिया का। तुम अपने को नहीं पहचानते, हम आए इसी मिला के लिए हैं, तुम भी भू स्वरूप ही है मेरी शक्ति है, तुम क्या भगवान। फिर उनको मोह से मुक्त करके चले गए हैं, निकल गए हैं। तो बहुत करोने लगा संन्यास लीला, पूरा वर्णन नहीं, केवल संन्यास लीला कहना तो पूरा संन्यास लीला ही आज पूरा क्लास भी वो तो 2 घंटा कम से कम चलेगा है। तो संन्यास लीला तो नहीं किया, लेकिन आज ये तिथि है, आज के दिन चैतन्य महाप्रभु घर छोड़ के संन्यास लेने के लिए केशव भारती हैं, उसको निर्दय घाट, निर्दय घाट आज भी है, गंगा को क्रॉस करके गए थे, निर्दय घाट टहर के गंगा को दूसरे साइड गए, निर्दय निर्दय सब मैंने सच्ची माता कह दी, सारे निर्दय है, सब कठोर हृदय वाले हैं। रोहित जो कही थी आज घाट का, वो घाट का नाम भी आज भी रहा क्या? निर्दय घाट है। यहीं से चैतन्य महाप्रभु निकल गए थे। आज ये संन्यास की तिथि है, संन्यास बारे में तो बोलने का समय नहीं, तो इसलिए हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में यदि हम भागवत क्लास नहीं लेते तो थोड़ा बोल सकते हैं। शाम को ये आने वाला नहीं है, हम करेंगे ब्रह्मचारी क्लास में, ठीक है? ब्रह्मचारी क्लास आगे जो आएगा हमें, आज के आज कौन सा बार है? हैं, रविवार सोमवार आ रहे ब्रह्म, ठीक है, परसों फिर ब्रह्मचारी क्लास में कहेंगे। हैं हैं, सन्यास लीला ब्रह्मचारी लोग के लिए ठीक है, माताजी लोग क्या करेंगे सन्यास लेके? सन्यास उनके लिए नहीं है। हैं, माम ही पार्थ विपाशित्य स्तेपिषु पापजनयो स्त्रिय वैश्य तथा शूद्र तेपि जानती परांगति। स्त्रियां को नहीं कहा गया सन्यास लेना है, स्त्रियां अपने भगवान भक्ति करके घर में रह के भी भगवान की भक्ति करें, नवदा भक्ति आश्रम में बहुत धम जाएंगे। तो सन्यास लीला अवश्य जो भी सुनेगा वो पवित्र हो जाता, ठीक है। और कोई किसके प्रश्न है समय? हाँ, क्या प्रश्न बोलो। कोई जरूरत नहीं है, अल्प मेध सम अल्प बुद्धि वाले करते, जो मार्ग चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं दिया, चैतन्य प्रभुपाद जी ने दिए हैं, प्रभुपाद जी ने कभी चतुर्मास्य नहीं किया। हाँ, कोई प्रभुपाद जी से बड़ा भक्त है ना क्या? कोई प्रभुपाद जी को ये नहीं कि ऐसे तपस्या ऐसे जाए कि मकर स्नान में उधर जाए बैठे, नहीं कभी है। मैं बोला उनको अष्ट वसु में से एक वसु बनना, वसु वसु का स्थिति इसी भौतिक जगत में है, हैं? तो ऊर्ध्व लोक में जाना है तो ब्रह्मलोक तक उत्तरायण में जाना, ठीक है। आपको उत्तर लोक उत्तरायण गति, उत्तरायण गति में कोई इसी भौतिक आब्रह्म माने ब्रह्मलोक तक यदि किसी भी लोक में जाना चाहते तो उत्तरायण गति में शरीर त्यागना, लेकिन जो भगवत धाम जाता तो उसका कंट्रोल यहाँ नहीं है भगवान के साथ। विष्णुदेव आज भी एक वसु के रूप में सेवा कर रहे हैं, समझ रहे हैं? मैं तो आप क्या कर चाहते, सभी का मत अलग अलग है। एक बार प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे, भुरीजन प्रभु कहे कि कहके देख प्रभुपाद, मम जन्मनी जन्मनी स्वरी भवतात भक्ति रहे तो कितु, हम तो आपके साथ में ही रहेंगे, आप जहाँ जब तक हैं आपके साथ रहेंगे और प्रचार में लगे रहेंगे, आपकी किताब बांटते रहेंगे, आपके प्रचार में इसको प्रचार को और बढ़ाएंगे, हम भगवत धाम ने प्रभुपा जी कहे डोंट मेक मी कम बैक अगेन। हैं, माई गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर टोल्ड हैं, दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज नॉट ए प्लेस फॉर ए इंटेलिजेंट पर्सन, है इंटेलेक्चुअल्स, फॉर ए इंटेलिजेंट पर्सन के लिए बहुत ही बुरा नहीं है। प्रभुपाद कहे कि मैं डोंट मेक मी कम बैक अगेन, आई डोंट वॉन्ट टू कम बैक अगेन, है जस्ट फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस गो बैक रिटर्न बैक इन दिस लाइफ टाइम है। तो भगवत धाम जाना तो भगवान की भक्ति करना पड़ेगा। आप प्रहलाद महाराज नहीं हो, महाजन है। आप ऐसे ही स्थिति में आने के लिए बहुत ऐसे सब सभी इमिटेशन नहीं कर सकते महाजन को है। तो हमको जैसे गुरु का आदेश है तो उपाय चाहते कि सभी कहाँ चले जाए, भगवत धाम चले जाए, गोलोक वृंदावन जाए इसी लाइफ टाइम में, रिटर्न बैक टू गॉड हेड है। तो इसलिए हमको भक्ति करना है, है? भक्ति के लिए सिर्फ हरे नाम एव केवलम है, नहीं कहा दूसरा कुछ नहीं कहा गया। कलौ नास्तैव गतिर अन्यथा है, इससे कोई दूसरी गति नहीं है। युगधर्म है शुद्ध भाव से कैसे नाम लोगो उसी के लिए चलो। अब जो अपराध के साथ नाम ले रहे हैं आभास नाम, फिर कैसे शुद्ध नाम कैसे उच्चारण करना, उस स्थिति में पहुंच जाता तो बस हो गया उसके जीवन, उसको क्या चाहिए है? तो इसलिए हमारा लक्ष्य है कि हम क्या लेना है, शुद्ध नाम कैसे लेंगे, ये स्थिति से ऊपर उठेंगे, अपराध युक्त नाम और आभास नाम से ऊपर उठ के हम कैसे शुद्ध नाम है। निरपराध नाम लई ले पाए प्रेम धन है, निरपराध नाम लेकर हमको भगवान चरण में प्रेम मिलेगा। नहीं तो नवविधा भक्त भजन और मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति है भजन के में, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति ये नव है, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम ले ले पाए प्रेमधन, ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। इसलिए इसकन किसके शिक्षा में चल रहा है, चैतन्य महाप्रभु टीचिंग सब लॉर्ड चैतन्य है। तो इसलिए हमको ये शुरू करने का कोई न चैतन्य महाप्रभु किया ना ये प्रभुपाद ने कहे ना कोई हमारा आचार्य यीशु जरूरत नहीं है। श्री पंच महासाधन जो रूप गोस्वामी कहे रूपानुगो वैष्णव, बस हमको शुद्ध करने के लिए आस्ते आस्ते पंच महासाधन को ज्यादा बस फॉलो कर सकते। हरे कृष्ण।